ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से स्थापित यह अध्यात्म विद्याभवन मुंबई में विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ गीता चिंतन माला के अंतर्गत अभी अपराह्न में वही गीता जो प्रातःकाल चल रहा था प्रथम अध्याय के सप्तम से आठवें श्लोक हो गया था। अर्जुन दोनों सेना के बीच में रह करके सबको देखा, सारे बंधु को देख करके भगवान रथ लेकर रख दिए, कहे देखो, तो देख करके कृपया परायाविष्ट अत्यंत कृपा से आविष्ट होकर के विषीदन दुखी होते हुए इदम अब्रवीति अर्जुन ने इससे कहा, क्या कहा आगे है यहां से चलेगा। अर्जुन उवाच दृष्टे मं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दृष्टे मं स्वजनं कृष्ण अर्जुन ने कहा दृष्टेमं कहीं दृष्टेदम ऐसा आता है, दृष्टेदम है क्या, दृष्टेमं दृष्ट्वा इमं स्वजनं हे कृष्ण समुपस्थितम युत्सुम युद्ध करना चाहते हुए अपने स्वजन सब को जो उपस्थित है सम्यक उपस्थितम युत्सुम युद्ध करना चाहते हैं अपने स्वजन इनको देख करके मम गात्राणि सीदंती गात्र शरीर शिथिल हो जाते हैं और मुखम च परिशुष्यति मुख सूख जाता है अत्यंत सूख रहा है मुख। बेपथुश्च शरीर में मैं शरीर बेपथु हूं, मेरे शरीर में बेपथु कंपन है, टुवेपरी कंपन धातु है, त्वितो उत्थुच सूत्र से होता है वेपथुश्च कंपन शरीर में है और रोमहर्षश्च जायते रोमहर्ष रोम रोमांच होते स्वरूप पुलकित हो जाते हैं शरीर बेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते वेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। ये अर्जुन अपनी स्थिति बताता है, वास्तव में जो स्थिति है ठीक ठीक ऐसे बताना ये सरलता है। मुख्य मार्ग में अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए सरलता आर्जव ऋजुत्व कहते सरलता ये आवश्यक है। जैसे अंदर है इसे बाहर कहना चाहिए। दुर्योधन दौड़ा था आचार्य के पास, अंदर भय है किंतु बाहर प्रकट नहीं करना चाहता है, भय नहीं दिखाना चाहता था, किंतु ये कहते हमारे अपनी स्थिति बताता है तो गात्र शिथिल हो गई मुख सूख जाता है शरीर में कंपन होता है रोम पुलकित तो हो जाते हैं। श्लोक बोलो। अर्जुन उवाच बोलो अर्जुन उवाच प्रारंभ जब करते तो मैं श्लोक बोलता हूँ एक के बाद, उसके बाद आप लोगों को बोलना है, बताने के बाद जो दूसरी बार बोलते हैं मैं प्रारंभ करता हूँ तो मेरे साथ मिलकर बोलना है, वहां मैं पहले बोलूंगा बाद में आप ऐसा नहीं, साथ मिलकर बोलना अंत में। गांधीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्तात गांडीवं स्रंसते, गांडीव धनु का नाम गांडीव धनु, हस्त से हाथ से स्रंसते सर करके गिर जा रहा है, सरकता है। स्रंसते हस्तात त्वचैव परिदहते, और त्वचा है परित दहते, दहते तो जल जाना है, जल रहा है, जल रही परित मतलब अच्छी तरह से अत्यंत जल रही है, जलना तो नहीं किंतु इतने ज्वलन जैसे। न च अवस्था तुम शक्नोमी, स्थिर होना के लिए मैं नहीं रह पाता हूँ, अवस्था तुम न शक्नो शक्नोमी न समर्थ हूँ। मैं मन भ्रमती वच, मेरा मन घूमता जैसे, भ्रमती वचे भ्रमती वेत कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव युधा मनुष्य विक्त उत्तम वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाच सर्वैव महारथ तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय। हाँ इतने रुक जाओ, अभी चलेगा कौन सा, गांधीवम संसते हस्तात, हाथ से गांधी सर कर गिर रहा है। त्वचैव परिदहते, त्वचैव परिदहते परित दहते, त्वचा ये जल रही है जैसे। न च अवस्थातुं शक्नोमि, और मन भ्रमतीव, मन घूमता जैसे, मन तो अंदर है किन्तु इसे मन घूमता जैसे, भ्रमतीव घूमता जैसे, इधर उधर जैसे चक्कर काटता है मन, कहाँ कहाँ भाग गया, स्थिर नहीं होता है, जैसे परमात्मा का भजन करते मन भाग जाता है, यहां तो भागना नहीं केवल घूमता है, कहां एकदम पता नहीं चलता है। बोलो श्लोक, गांडीवं संसते निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि हे केशव, विपरीत निमित्त में देख रहा हूँ, कुछ ऐसे शकुन होते हैं जिनसे कुछ मालूम हो जाता है क्या होने वाला, दक्षिण अंग स्फुरण हो पुरुष के तो अच्छा है, वाम चक्षु वाम होता आदि स्फुरण हो तो अपशकुन कहते अच्छा नहीं होता है, किंतु स्त्री के वाम अंग स्फुरण तो अच्छा मानते हैं, दक्षिण अंग स्फुरण तो अच्छा नहीं मानते। इसी प्रकार बहुत निमित्त में देख रहा हूँ, विपरीत निमित्त, ये समय आगे जो समय आ रहा है अच्छा समय नहीं है, और न च स्वजनम आहवे हत्वा श्रेय अनुपश्यामी, अपने बंधु स्वजन को मार करके आहवे युद्ध में मार करके श्रेय कल्याण में नहीं देखता हूँ, न श्रेय अनुपश्यामी, साधन चतुष्टय संपन्न ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकारी होता है, चार ही साधन चाहिए, पहला साधन है विवेक, विवेक पहले है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है अनित्य क्या है, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, त तद भिन्नं तु सर्वं अनित्यं अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। भगवत पाद ने तत्वबोध छोटा ग्रंथ में बताया ये कि ये विचार करने पर होता है सब अनित्य है नाशवान है। ये विवेक होने पर ही अनित्य पदार्थ सर्व भी अनित्य है, संसार किस प्रकार चल रहा है, कब से चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ क्या हमारा लक्ष्य है, जन्म के पहले कहाँ थे, मरण तो सुनिश्चित है, मरने के बाद कहाँ जाना है, ये सब विचार होता है। बहुत अनेक जन्म के पुण्य कर्म जो फल देता है ये विवेक होता है, और विवेक होने पर वैराग्य होता है संसार से। अनित्य पदार्थ निश्चित हो गया तो अनित्य संसार से वैराग्य होता है। जो मालूम होता है जितने इकट्ठी करे सब छोड़ कर जाना है, तो क्यों इतने इकट्ठी करके उसके पीछे क्यों पड़े, क्या लेकर ही जाना, ये सब विचार होता है। ये विचार सामान्यतः नित्यानित्य वस्तु विवेक यही विचार करता है। और जब पशु पक्षी विचार नहीं कर पाते हैं, उन सुबह से लेकर के आगे तक कहाँ खाना मिलेगा, खाद्य जानते हैं। पशु जंगल में देखा है, ऋषिकेश में छोड़ देते, जंगल में जाते हैं, कहाँ घास मिलता है वो मालूम है, जाकर घास पत्ता खाएंगे, कहाँ पानी मिलता है वहां पानी के समय वो अपने आप पहुंच जाते हैं, वहां पानी पीते आराम करते, शाम होने के पहले आ जाते हैं।
उद्धार कब होगा उद्धार,
अपना कब होता विचार करो। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर ही कुछ होगा, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी अनादिकाल से जितने मनुष्य भी है उद्धार नहीं हुआ, कितने साल चले गए मालूम है अनादिकाल से, कितने करोड़ कल्प चले गए नहीं हुआ है, अभी भी जितने मनुष्य है उनका उद्धार कैसे होगा और अपना कब क्या होगा उद्धार, ये विचार कर हमारा क्या होगा, समाप्त होने के बाद क्या होगी, क्या स्थिति है, ये सब विचार होता है। ये पुण्य कर्म के फल परमात्मा की कृपा से सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्। विवेक को नाम पहले विवेक है, वैराग्य को प्रधान कहा। विवेक होने के बाद भी वैराग्य हो तो विवेक हुआ, शब्द से तो मालूम हो जाता है, सबको मालूम है संसार अनित्य कोई किसका नहीं, किंतु संसार से वैराग्य नहीं होता है तो विवेक नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर से तो कहते सब अनित्य सब अनित्य, किंतु संसार में सत्यत्व बुद्धि है, ये मिथ्या संसार है, प्रपंच मिथ्या है, ये बुद्धि शब्द से कहते सब मिथ्या है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बड़े सरल है, किंतु मिथ्या तो बुद्धि नहीं होती, सत्यत्व बुद्धि है, तो इसलिए वैराग्य नहीं होता है। विवेक के बाद वैराग्य, कभी कभी बहुत किसके वैराग्य हो जाता है, घर छोड़कर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है, नाराज होकर कहीं चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आता है, वो वैराग्य स्मशान वैराग्य कहते, कोई मर गया बड़े दुखी होकर वैराग्य हो जाता है, थोड़े दिन दो चार आठ दिन कोई खाना पीने में कम खाएगा, फिर बाद में जैसे कोई से बहुत उम्र हो जाने से वैराग्य हो जाएगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। वैराग्य जिसको होता है पूर्व जन्म के पुण्य के कारण परमात्मा की कृपा से, कम उम्र से वैराग्य होता है, तभी तो साधु बन जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे किसे मिलते हैं सब छोड़कर आ जाते हैं, और आगे माता पिता भाई बंधु के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर कोई आ जाता है तो ये भाग कर छिप जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, घर से कोई आ गया। और शास्त्र में आया जो सन्यास लेता है चोरवत वास, चोर जैसे छिप कर रहता है, इसे चोर जैसे रहे, घर पूर्व आश्रम में पूर्व स्थान में किसको पता नहीं चले, वो लोग आएंगे तो विघ्न करेंगे, छिप कर रहते हैं, ऐसे ही साधु वैराग्य हो जाता है। और कुछ कोई लोग कुछ कुकर्म करते हैं, कहीं पुलिस पकड़ने वाला है, चोरी करते, कुछ वो भी चल जाते साधु मरने के लिए, छिपने के लिए, ऐसे भी कुछ लोग साधु वेश बनाते, वहां जाने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर कहीं जाते कुछ करते तो कुछ ना काम ऐसे करते, विभिन्न लोग ऐसे होते हैं, तो वैराग्य नहीं होता है, कभी कुछ कारण से चले गए बाद में फिर वापस आ गए। और बहुत इस प्रकार है संसार में, कितने दुख भोगने पर भी छोड़कर चल जाए साधु बन जाए नहीं होता है। जितने भी कहा जाए देखे बैठ करके भोजन करो खाने पीना रहने की सब व्यवस्था है तो भी नहीं, चोरी करेंगे फिर पकड़े जाएंगे पिटाई हो फिर तोड़ देने के बाद फिर चोरी करेंगे फिर वही काम करेंगे संसार में भटकते हैं। तो वैराग्य नहीं होता है तो विवेक यहाँ अर्जुन में यहाँ दिखाते हैं वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। यहाँ क्या दिखा रहे हैं विवेक, इनको मैं युद्ध में मारू तो श्रेय कल्याण नहीं देखता हूँ, कल्याण नहीं देखता तो यही विवेक है। मानने के बाद क्या मेरा कल्याण होगा क्या लाभ होगा ये न पश्चा में नहीं देखता हूँ। श्लोक बोलो और यहाँ युद्ध करके जीत लेंगे तो जय प्राप्त करे तो राज्य प्राप्त होगा सुख प्राप्त होगा ये तो अर्जुन को मालूम है। किंतु अर्जुन कहता है इससे क्या हो जाएगा हम नहीं चाहते। नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। थोड़ा शांति से मिलकर के बोलना, कोई पहले नहीं बोलना, सब मिलकर बोले हे गोविंद संबोधन है, हे कृष्ण हे गोविंद। विजयम न कांक्षे मैं विजय नहीं चाहता हूँ, युद्ध से क्या होगा जीत लेंगे तो विजय मैं नहीं चाहता हूँ। विजय करने पर राज्य मिलेगा कहते न चाहे राज्यम, राज्य भी नहीं चाहता हूँ। राज्य मिलेगा तो सुख से रहोगे नहीं तो दुख प्राप्त होता है, कहते न सुखानी च न कांक्षी सुख भी नहीं चाहता हूँ। और युद्ध करने से क्या मिलेगा विजय राज्य सुख, अर्जुन इसमें क्या चाहता है न विजय न राज्य न सुख। तो कहते भोग मिलेगा, कहते ये किम नो राज्य न गोविंद, हे गोविंद राज्य से हमको क्या मिलेगा, किम भोगेर जीवित न बाकी जीवन से भी क्या लाभ है, भोग से क्या होगा राज्य से क्या होगा, ये सब क्या जरूरत है। यही होता है वैराग्य चाहिए, वैराग्य क्या है यह अमूत्र फल भोग विराग। इस लोक में परलोक में इस लोक में सांसारिक दुख से वैराग्य, परलोक में स्वर्ग आदि सुख से वैराग्य। परमात्मा को प्राप्त करना कोई चाहता है, परमात्मा दर्शन करना चाहता है, परमात्मा के जो भक्त है वो संसार में उसकी आसक्ति है या परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति, संसार में आसक्ति होगी, संसार में आसक्ति हो तो भक्ति नहीं है। भक्ति करेगा भक्ति बढ़ेगी तो संसार में आसक्ति बढ़ेगी घटेगी, संसार में आसक्ति नहीं घटे तो भक्ति बढ़ जाएगी। भक्ति करते करते यदि भक्ति बढ़ गई तो संसार में आसक्ति घटनी चाहिए, यदि संसार में आसक्ति नहीं घटती है तो भक्ति नहीं की इसने। भक्ति करेगा तो जितने जितने ईश्वर में भक्ति इतने इतने संसार से आसक्ति कम हो जाए। तो वैराग्य होता है परलोक, इस लोक नहीं परलोक नहीं, अहिक फल विराग यहाँ दिखाया, परलोक का नाम यहाँ नहीं है। इस लोक में कोई ये फल हमको नहीं चाहिए, ना विजय ना राज्य ना सुख ना जीवन, जीवित रहकर भी क्या करना है, जीवन रहने से खाली काफी कर तो मरना था अंत में, बहुत दिन रहकर मर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, बहुत दिन रहकर मरेगा तो क्या मिलेगा, बहुत खाद्य मिल जाएगा, बहुत खाद्य खाकर मर जाए कम खाद्य खा कर मर जाए, मरने के बाद क्या लेकर जाएगा, कुछ खाद्य लेकर कुछ जाता है कुछ नहीं। क्या ये तो भोग सुख आदि चाहिए, ये सा आगे कहेगा। श्लोक बोलो ये सामर्थ्य कांक्षितं नो
राज्यं भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ये सामर्थ्य न कांक्षित राज्यम भोगा सुखानि च राज्यम कांक्षितम भोगा कांक्षिता सुखानि च कांक्षितानि जिनके लिए हम राज्य चाहते भोग चाहते सुख चाहते तो इमे अवस्थिता युद्धे तो इमे तो क्या है ते वे वे को ते कर देते ते इमे युद्धे अवस्थिता वही युद्ध में स्थित है ते शब्द है स तो ते ते को दे कर देते इंग्लिश में ये शब्द क्या है ते ते इमे अवस्थिता युद्धे युद्ध में खड़े क्या करके प्राणान त्यक्ता धनानिश प्राण को धन को छोड़कर खड़े प्राण को छोड़कर क्या है प्राण को कौन पकड़ रखा है प्राण को छोड़कर मतलब खड़े है तो मरने के लिए तैयारी है यही प्राण को छोड़ना है जब प्राण के लिए है तो दूर में भाग जाएंगे क्यों युद्ध में खड़े रहेंगे युद्ध में जाए तो मरेंगे कोई मारेगा कोई मरेगा मरेगा तो बहुत लोग मरेंगे तो प्राण में छोड़ करके प्राण को और धन कहाँ है जो प्राण छोड़ना है तो धन को लेकर कौन जाता है प्राण को छोड़ने के लिए तैयार तो धन प्राण त्यक्ता धनानी धन को भी छोड़ करके खड़े जो इनके लिए में चाहते हम राज्य भोग आदि वो भी मरने के लिए तैयार है हम राज्य किसके लिए करेंगे कोई मकान बनाता है जिसके लिए मकान बनाता है वो मरने के लिए तैयार है मकान किसके लिए बनाना ये जिनके लिए हम राज्य भोग सुख चाहते वो तो मरने के लिए तैयार है इसलिए अहिक ये लोग फल भोग वैराग्य देखा है यहाँ अर्जुन केवल कहता नहीं अंदर वास्तविक जो है स्थिति बताता है हम नहीं चाहते श्लोक बोलो हे सामर्थे कांक्षितम् राज्य तो अनुसार है भोग होने से राज्यं भो जो बोलेंगे तो औसत लगेगा और यहाँ दो प्रकार है अनुसार से ही परसवन होता है तो वह पदांतस्य विकल्प से परसवन का तो म भी हो सकता है किंतु अनुसार बोले तो राज्यं भोगा तो राज्यं भोग जो बोलेंगे तो औसत लगेगा भ तो वहां आ जाएगा राज्यम भोग ऐसा नहीं कोई कहे राज्यम भोग ऐसा नहीं राज्यम भोग राज्यम भोग राज्यम भोग तो राज्यम अनुसार बोल करके भो बोलेंगे तो उष्ट लगेगा वहां लगेगा मां बोलते करके किन्तु मिलकर रहेगा राज्यम भोग सुखानी च देखो अनुसार उच्चारण और मकार उच्चारण भेद किसे राज्यं भोगः सुखानि च ये अनुसार चरण हुआ राज्यं भोगः सुखानि च या मकर उच्चारण हुआ दोनों प्रकार यहाँ है व्याकरण में वा पदांत से पदांत होने से विकल्प से पर में प वर्ग होने से मकार जैसे आ जाएगा किन्तु प वर्ग नहीं होगा तो मकार नहीं होगा बताएंगे जहाँ प वर्ग नहीं होगा वहां मकार नहीं होगा जैसे राज्यं सुखानी च वहां म नहीं आएगा 32वें श्लोक में राज्यं सुखानी च अभी हाँ आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाला संबंधिन तथा आचार्य आचार्य लोग पितर 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 तुले पिता पिता आदि पुत्र है पितामह है मातुल है मामा ससुर पौत्र अपने ससुर भाई के ससुर ससुरा पौत्र है, पुत्र के पुत्र श्याल, पत्नी के भाई संबंधी सब ही लोग तकड़े, इन सबको मैं मानना नहीं चाहता। आगे कहते हैं श्लोक बोलो, आचार्य पितर पुत्र एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपित्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु महि कृते। एतान हन्तुम न इच्छामि, एतान हन्तु न हन्तुम न इच्छामि, इनको मानना में नहीं चाहता हूँ। हे मधुसूदन, घ्नतो भी मरा जाने पर भी मैं स्वयं मारे, मुझे वो मारे तो घ्नतो भी हन्तुम न इच्छामि, मुझे मारे मैं मर जाऊं तो भी इनको मैं मानना नहीं चाहता हूँ। राज्य प्राप्त होगा, कहते कि काली इस लोक राज्य क्या है, अपि त्रैलोक राज्यस्य भूर भुव स्व पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग तीनों राज्य मिल जाए तो भी इनको त्रैलोक राज्य से हेतु, त्रैलोक राज्य के हेतु इनको मैं मानना नहीं चाहता, मैं मर जाऊं तो भी। यहाँ क्या वैराग्य है, पारलौकिक वैराग्य, प्रतिहलोक वैराग्य था, अभी त्रैलोक राज्य, यहाँ रहते रहते स्वर्ग किसको मिलता है, मरने के बाद मिलेगा, तो स्वर्ग के लिए भी नहीं चाहता हूँ, पितृलोक के लिए अंतरिक्ष पितृलोक आगे स्वर्ग, यहाँ तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इनको मानना नहीं चाहता हूँ। पहले यह लोक फल विराग आया था अनाकांक्षी विजय कृष्ण, और यहाँ हो गया त्रैलोक के राज्य कर से पारलौकिक फल वैराग्य, परलोक में भी सुख नहीं चाहिए। अभी त्रैलोक के राज्य से है तो केमन वही कहते, और पृथ्वी के लिए क्या कहना, स्वर्ग के लिए भी मैं नहीं चाहता उनको मानने के लिए, स्वर्ग के खाली स्वर्ग राज्य के, स्वर्ग का राजा बनने के लिए कितने तपस्या करके इंद्र स्वर्ग के राजा देवताओं के राजा होते हैं, ये कहते ये सब मिल जाए तो भी मैं इनको मानना नहीं चाहता हूँ, ये पारलौकिक वैराग्य। परलोक में भी इसी में नहीं, अगे हमको सुख मिले इसी जन्म में, नहीं तो पर जन्म में, अभी नहीं तो स्वर्ग में जाए, ये सब सुख ये भी नहीं चाहिए, अभी नहीं कि कभी नहीं सुख, एक परमात्मा शत्रु तो कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे मन में विचार करके दृढ़ निश्चय हो जाए तभी भक्ति होती, तभी ज्ञान होगा, तभी कुछ लाभ होता है। विचार विवेक के बिना संसार से वैराग्य नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति की आशा संभव नहीं, इसलिए त्रैलोक के तीनों लोग को कुछ नहीं चाहिए, ये वैराग्य दृढ़ वैराग्य चाहिए, विवेक के बाद वैराग्य। श्लोक बोलो, विवेक में खाली इतने नहीं, थोड़ा विचार करे करने से क्या लाभ, क्या हानि, नहीं करे तो क्या होगा, थोड़ा अच्छी तरह से विचार करे विवेक होता है, बार बार विवेचन करने से वैराग्य होता है। पशु पक्षी विवेक नहीं कर पाते, खाना पीना जानते विचार नहीं कर पाते, मरने के बाद क्या होगा, क्या लेकर के आए, क्या जाएंगे, कुछ नहीं कर पाते। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके विचार नहीं करता है, ऐसे खा पी के मर जाता है, वो पशु से बढ़ करके है या पशु से कम है, क्या कम है, पशु से एक तो है, पशु कम से कम पुण्य कर्म नहीं करे तो पाप में नहीं करता है, जो कर्म लेकर के आए उसको तो भोग लेंगे, जाते समय पुण्य लेंगे या पाप लेंगे, खाली हाथ जाएंगे, तो खाली हाथ जाएंगे पशु। मनुष्य जब आया क्या लेकर के आया, पुण्य पाप दोनों, पशु पक्षी पेड़ पौधे के अपेक्षा अधिक पुण्य लाया, पाप भी लाया, उसको तो भोग कर लिया। यदि पुण्य पुण्य कर्म सत्कर्म क्या, तो जाते समय पुण्य लेगा और पाप तो करता ही है, पाप भी लेता है, और पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पाप लेकर जाएगा, पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पाप लेकर जाएगा, पाप ही लेकर के जाएगा। पशु पक्षी पुण्य नहीं लेते हैं पाप लेकर जाते हैं, मनुष्य पुण्य नहीं लेगा तो पाप लेकर के जाएगा, तो मनुष्य जाते समय पाप लेकर जाएगा, पशु पक्षी जाते समय पुण्य नहीं पाप नहीं, तो कौन बड़ा हुआ, बुद्धिमान हुआ, मनुष्य बुद्धिमान हुआ ना। मनुष्य पाप लेकर जाता है, पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पाप तो लेकर जाना ही पड़ेगा। इसे कहते पशु पक्षी में थोड़ा, पशु में कोई मनुष्य कम क्या हुआ, पशु का सिंह है और पूछे मनुष्य के, जो मनुष्य विवेक बैरा के नहीं तो बिना सिंह और बिना पूछ वाले पशु है, सिंह पूछ सही न पशु, ये भी पशु है, पशु नाम पति कह, भगवान को पशुपति कहते ना, मनुष्य भी तो पशु है किन्तु सिंह नहीं है और पूछ भी नहीं है, इसे पशु से कम हो गया। पक्षी उड़ते हैं, मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं है, और जाते समय पशु पक्षी पेड़ पौधे पाप भी नहीं लेते हैं पुण्य भी नहीं लेते हैं, मनुष्य सत्कर्म करेगा तो पुण्य लेकर जाएगा और पुण्य नहीं करेगा तो पाप तो होते ही है, चलते फिरते कीड़े मकड़े मरते हैं, पाप लेकर जाएगा जाता है।
अगले जन्म का पुण्य है तो लेकर जाएगा ना पशु,
अगले जन्म आगे जन्म का पुण्य वो संचित कर्म आपके वहाँ है, कोई लेकर के नहीं आया, जो आपके संचित कर्म आगे भोगने के लिए वो साथ में नहीं, उसको लेकर जाने के लिए साथ में हो तो लेकर के जाएगा, वो साथ में है ही नहीं, वो संचित है आपके वहाँ, वहाँ है लेकर के जाएगा नहीं, जो रुपया आपके पास हो वहाँ जमा है, आप जाते समय उसको लेकर जाते हो, जो रुपया आपके पास है वो रुपया खर्च कर लिया, कुछ कमाया तो लेकर जाओगे, और जो रुपया उधर रखा गया जाते समय उस रुपया को लेकर जाते ना नहीं, जो रुपया आपके खंभात में रखा गया यहाँ से जाते समय उस रुपया को लेकर जाते हो ना नहीं, वो तो वहाँ है। इसी प्रकार संचित कर्म वहाँ है, परमात्मा ने रखा है, बहुत बड़े बड़े लकर है, सबके संचित कर्म अलग अलग रखा गया, परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, कितने कृपालु, देखो आप अनादिकाल से कितने जन्म में पुण्य पाप कर्म किया, अभी धन को रक्षा करने के लिए कितने प्रयत्न करना पड़ता है, लकड़े में रखे तो वहां भी चोरी हो जाती है, घर में रखते हैं चौकीदार रखते हैं बड़े मकान, चोरी हो जाती, नष्ट हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, भूकंप हो गया नष्ट हो गया, जल गया चोर ले गया, किन्तु पुण्य पाप कर्म आपके पुण्य पाप कर्म सुरक्षित है, सब परमात्मा ने रखा, सबके अलग अलग रखे, क्या जन्म मरण सृष्टि प्रलय कुछ हो जाए आपके पुण्य पाप सो रहता है।
तो कब से चला है ये बात मालूम,
अभी प्रश्न था जाते समय वो कर्म लेकर के जाएगा, देखो पहले ये प्रश्न का समाधान हो जाए, आपका जो पहला प्रश्न उसका समाधान हो जाए फिर दूसरा प्रश्न करना, जाते समय संचित कर्म लेकर के जाता है ना नहीं, जाते समय संचित कर्म लेकर नहीं, संचित कर्म वहाँ है, आपके रुपया जो वहाँ है वहाँ है, यहाँ से जाते समय उस रुपया को लेकर जाओगे, अभी नहीं समझा, दूसरे प्रश्न पर नहीं पूछने के तैयार हो जाते, पहले भी छूट जाता है, दूसरा प्रश्न क्या है, हाँ कोई हाँ ऐसे समझना पड़ता है, जो है उसको लेकर जाना, जो वहाँ है आप कहीं बाहर आए वस्त्र लेकर कपड़ा लेकर के आए उसी कपड़ा को लेकर जाओगे, या घर में जो कपड़ा उसको लेकर जाओगे, जो लेकर के आए और कुछ खरीदे तो उसको लेकर जाना, और घर में जो रखा गया उसको लेकर जाना क्या, वो तो वहां है, संचित कर्म को लेकर के नहीं जाते, जो कर्म यहाँ करेंगे उसको लेकर के जाएंगे, इसलिए यही करना होता है, जाते समय क्या लेना है, मनुष्य यदि कुछ सत्कर्म नहीं करता है पुण्य तो नहीं लेगा किंतु पाप तो लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म अवश्य ही होते हैं, चलते फिरते कीड़े मकड़े मर जाते हैं तो पाप कर्म होता है ना नहीं, आपको मालूम नहीं है, कोई कहते हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे तो कोई पाप होगा, नहीं मानने से भी पाप होगा, मानना नहीं मानने से मतलब नहीं, निषिद्ध कर्म से पाप होगा, श्लोक बोलो एतान्न
एतान्न हन्तु
घातोपि मधुस् निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः हे जनार्दन संबोधन धातराष्ट्रान निहत्य न का प्रीति स्यात् धातराष्ट्रान द्वितीय बहुवचन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि धातराष्ट्रान निहत्य निहत्य क्या विभूति मालूम है अव्यय निहत्य मार करके न का तस्मा का हमारा क्या हमको क्या प्रीति क्या सुख मिलेगा हमें क्या सुख मिलेगा उनको मार करके का प्रीति स्याद प्रीति सुख प्रसन्नता क्या होगी हमारी उनको मार कर क्या होगा वो तो मारेंगे तो धन मिलेगा राज्य मिलेगा सुख मिलेगा वस्तु तो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये धन मिलता है तो ये मिलना नहीं है पाप प्राप्त होता है धन प्राप्त होता है तो क्या मिला आपको मालूम है पाप मिला धन मिला धन दिखता है पाप नहीं दिखता है धन मिलने से कुछ नहीं होता है पाप पुण्य ही आपकी संपत्ति है धन भी मिला पाप मिला तो विवेकी लोग क्या दिखते पाप मिला धन के हिसाब नहीं है या धन की गिनती नहीं है धन बहुत होने पर भी जाते समय उसका कुछ पुण्य धन बहुत करोड़ करोड़ रुपया है जाते समय उसका कुछ पुण्य लेकर जाता है धन का कुछ लेकर जाता है उसका कुछ पुण्य होता है क्या धन संपत्ति रखने से कुछ लेकर जाएगा लेकर क्या जाता है पुण्य अथवा पाप वही संपत्ति जिस संपत्ति को आप ले सकते हो आगे जो आपको साथ देगा फल देगा वही संपत्ति है और जिसको यही छोड़कर जाना है वो संपत्ति अपना नहीं है इसलिए पापमेव आश्रय दस्मान हमको तो पाप ही आश्रित होगा पाप ही होगा हत्वैतान आतताई न इन आतताई को मार करके हमको तो पाप ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं पापमेव पुण्य नहीं पाप ही मिलेगा सैव पापिष्टतमो यह कुर्यात कुलनाशनम जो कुलों का नाश करे वो पापिष्ठ सबसे बड़ा पापी है इसे शास्त्र में क्या सैव पापिष्टतमो यह कुर्यात कुलनाशनम कुलों का नाश करेगा तो पापिष्ठतम सबसे बड़ा पापी है तो मैं इसको मार करके कुलों नाश करूं तो बड़ा पापी हमको मिलेगा यद्यपि आदत आई है आतताई कहते अग्निदह घर दश्चैव शस्त्र प्राणी धनाप क्षेत्र दार हरश्चैव छड़ेते आतताई न अग्नि देकर जलाने वाले को कहते आतताई गरद विष देने वाले शस्त्र प्राणी शस्त्र में लेकर आते हैं कोई मारने के लिए धन अपहरण कर लेता है वो भी आतताई है और क्षेत्र भूमि जमीन को ले लिया दार पत्नी को कोई ले लिया क्षेत्र दार हर्षैव ये छे होते आतताई रातताइनम आयांतम हन्या देव अविचारयन आतताया तो बिना विचार उसको मार दे नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन जो आतताई उनका मानने पर कोई दोष नहीं ये यद्यपि आतताई है क्योंकि अग्निद गरद आदि कहेंगे तो सब प्रकार दोष इनके पास है आतताई है तो भी इनको मारेंगे तो हमको तो पाप ही प्राप्त होगा यद्यपि शास्त्र में कहा तो भी हनन करेंगे तो पाप होगा जब विचार करता है वो देखता है क्या हानि क्या लाभ है पाप तो होगा हम हिंसा करके इसलिए पाप होगा ये करना हमको क्या प्रीति होगी इसमें क्या सुख मिलेगा श्लोक बोलो
पापी
कभी कभी कुछ बोलता रहता है किंतु क्या कहना चाहता है पता नहीं चलता है। दुखी होकर खाली बोलता है तो अभी करना चाहते कि वो कहता है क्या चाहता हूँ। तस्मा ना रहा वयं हन्तुं धार्त राष्ट्रान सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव। तस्मा न अरह वयम धातराष्ट्रान सबान्धवान हंतुम न रहा। धृतराष्ट्र के पुत्र जो धातराष्ट्र है दुर्योधन आदि अपने बंधु बांधव जितने हंतुम न रहा, हमें उनको मार नहीं सकते हैं, मारने के लिए हम समर्थ नहीं है, मारना उचित नहीं है, क्योंकि कह के उनको मार कर राज्य मिलेगा तो सुखी हो जाओगे। अर्जुन कहता है माधव कथम स्वजनम हत्वा सुखी न श्याम, स्वजन अपने परिवार भाई बंधु को मारकर कैसे हम सुखी हो जाएंगे। जब कोई परिवार का कोई स्वजन मर जाता है उस समय उसके धन संपत्ति सुख देते हैं, कोई सुख देने वाले नहीं, उस समय इतने दुखी हो जाता है। अपने परिवार कोई मरता है तो कितने दुखी हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। अपने मन नित्य सब तो कष्ट है, परिवार के कोई मर जाता तो बहुत कष्ट होता है। कितने कष्ट भोग करते, किसके क्या के कैसे, कोई कम उम्र में चला गया, बहुत उम्र में कोई चला गया तो कष्ट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति उसके पिता चले गए, दुखी होकर के रो रो कर चला गया, हमें कहा क्या कि पिता को कैसे मैं प्राप्त करूं, कैसे देखूं, कहां दर्शन करूं, किसके बहुत उम्र हो गया। अरे बहुत उम्र हो गया, पिताजी जब थे तो तब तो हम निश्चिंत थे, भय नहीं करते थे, अभी पिता चले गए तो हमको तो डर लगता है, मैं कैसे चलूंगा क्या करूंगा। सब काम करता समर्थ है किंतु कहता हमारे ऊपर कोई थे, अभी कोई हमारे ऊपर है ही नहीं, कोई हमको डांटने वाला भी नहीं। पिताजी हमको डांटते थे, अभी कोई डांटने वाला नहीं, रोता है अभी हमको कोई डांटने वाला नहीं। नाम लेकर कहता ये नाम से हमको कौन बुलाएगा, ऐसे ऐसे हमको बुलाते ऐसे कौन बुलाए, मतलब इतने दुखी होकर के घूमता भटकता है। किसके माता मरी कहता है, और किसके पुत्र योग्य बन गया, तैयार हो गया, समाप्त हो गया 25 साल में विवाह करने की तैयार करते, कमात्म हो गया, एक ही पुत्र बहुत संपन्न है, किसने उसको बता दिया आप कुछ करो, कोई किसी को ऐसा हुआ था उसने कुछ किया तो वही स्वयं पुत्र आपके परिवार में फिर आ जाएगा। वो सोचता है चलो अपने पुत्र जी किसी प्रकार कहा किसी में आ जाए तो बहुत अच्छा है। वो पूछता है क्या करेंगे, किस प्रकार पुत्र फिर हमारे में आ जाए, तो आने पर वो पुत्र करे पहचानना मुश्किल है, कोई बता दे तो वो इतने संतोष नहीं कि पुत्र आ गया करेगी, तो भी उसके पीछे बहुत प्रयास कर रहा है किस प्रकार वो पुत्र हमारे घर में आ जाए, आ जाए मतलब जन्म ले ले, और नहीं तो पुत्र को कहीं मिलना है अपने शरीर से कैसे मिल सके, जितने कहने पर ही समझने का नहीं, हमको तो उसको मिलना है, किस प्रकार मिलेगी, क्या करने से होगा, ढूंढ रहा है इधर उधर, तो कोई कोई कुछ कोई बता देते, कुछ उपाय बताते, कुछ करा देते, कुछ करते, हम तो साफ साफ बताए किंतु बेचारा क्या करेगा। दुखी है तो उसको समझाने कोई क्या समझा सकते हो, करोड़ों करोड़ों रूपया वहां काम करेगा जो परिवार समाप्त होता है, तो ये दुख हो तो इनको मार करके हमें क्या दुखी होंगे। स्वजन में कहत्वा कथम सुखी न श्याम, हे माधव इनको मारकर हम सुख कैसे होंगे, इसलिए तस्माद वयम हंतु ना रहा, इसलिए हम मार नहीं सकते, उनको नहीं मारेंगे, यही उसका अभिप्राय है। श्लोक बोलो तस्मा ना रहा यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् यद्यप्येते न पश्यन्ति एते ये सब लोभोपहत चेतसः यद्यपि न पश्यन्ति जब नहीं देखते लोभेन उपहतम लोभोपहतम चेतः येषाम जिनका चित्त लोभ से उपहत हो गया लोभयुक्त हो गया कि लोभ काम क्रोध लोभ आगे आएगा तीन नरक के द्वार है ये जब आ जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है क्रोध होने पर क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए पता नहीं चलता है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोभोपत चेतसोन से ये नहीं देख पाते है क्या नहीं देख पाते हैं कुलक्षय कृतम दोषम कुलक्षय के कारण जो दोष उनको दिखता नहीं अभी और मित्र द्रोहे से पातकम न पश्यन्ति मित्रों का द्रोह करेंगे तो जो पाप होगा इसको भी नहीं देखते हैं किसके कारण लोभ के कारण काम क्रोध लोभ हो जाता है तो दिखता नहीं कर्तव्य अकर्तव्य क्या मालूम न होता है क्रोध से कोई के अपने पास कुछ रहा उसको फेंक देते जोर से तोड़ देते हैं
बड़ा दुश्मन है
बड़े बड़े लोग ऐसे भी है कुछ पास में है किसी को जोर से तोड़ देते हैं लड़के के ऊपर नाराज हो गए वो उसने देखकर फेंका फेंका तो उसके ऊपर फेंकेंगे नहीं उसके ऊपर फेंका तो उसका खाली देखा नहीं कि डर नहीं करते नीचे पास जोर से फेंक दिया तो तोड़ देते हैं तोड़ देने से क्या मिलता है क्रोध होता है तो बाद में पछताता बहुत तो फेंक देते हैं तोड़ देते हैं कुछ ना कुछ कर लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं कोई सिर अपने तोड़ पीटते हैं अपना सिर पीट देते हैं क्रोध से दुख से कोई करते कोई क्रोध से करते कोई की दूसरे को मारते कुछ ना कुछ हो जाता है
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती
है। हाँ ये लोभ अर्जुन ने क्या दिखाता है ये लोभ भी है किंतु हम निर्लोभ ये भी अध्यात्म मार्ग में परमात्मा प्राप्ति के लिए निर्लोभता चाहिए ये अर्जुन यहाँ दिखाता है निर्लोभता यहाँ है ये लोभी है यद्यपि नहीं देखते आगे कहेंगे हम कैसे नहीं देखेंगे अर्थात उनमें लोभ के कारण उनको दिखता नहीं युद्ध कर मारने पर क्या पाप होगा उनको दिखता नहीं कुलक्षय दोष में उनको दिखता नहीं किसके कारण लोभ के कारण अर्थात इनमें लोभ के कारण था अर्जुन में अभी लोभ ने निर्लोभता है श्लोक बोलो कथम न जेयमस्मा पापादस्मा निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन यद्यपि न पश्यन्ति यद्यपि ये लोग नहीं देखते हैं कथम न अस्माभि ज्ञेयम् वो लोभ के कारण यद्यपि नहीं देखते हैं कि हम कैसे नहीं देखेंगे कथम अस्माभि न ज्ञेयम् हम कैसे निवृत्त नहीं होंगे अस्मात् पापाद निवर्तितुम कथम अस्माभि न ज्ञेयम् हम जानते समझते ये लोभी है लोभ के कारण उनको दिखता नहीं तो हमारे इसे लोभ नहीं तो हम कैसे नहीं देखेंगे हम कैसे नहीं समझेंगे अस्मात् पापाद निवर्तितुम कुलक्षय कृत जो पाप है और मित्र द्वय में पाप होता है इसको देखते हुए हम कैसे पाप से निवृत्त नहीं होंगे जान करके पाप कैसे कर्म करेंगे लोभ के कारण भ्रष्ट बुद्धि हो जाती तो कुछ ना कुछ कर लेते हम समझते हैं तो ऐसा पाप से निवृत्त क्यों नहीं होंगे क्योंकि हम क्या देखते हैं कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः हम देखने वाले देखते हैं हमको दिखता है कुलक्षय करेंगे तो दोष होगा पाप होगा हम साफ देखते हैं हमको साफ दिखता है क्या होने वाला क्या पाप है जान करके पाप होने वाला उससे निवृत्त कैसे नहीं होंगे थोड़े जो विचार नहीं कर पाते उनको दिखता नहीं थोड़े विचार करेंगे तो दिखता है क्रोध आने के बाद एक आवेश होता है क्रोध आवेश आवेश से कुछ निर्णय नहीं करना चाहिए, उस समय दिखता नहीं, कोई कुछ कहेगा तो ग्रहण नहीं करेगा, शांत तो हो जाए, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्रोध है बहुत दुख हो गया, शांत तो हो जाओ, दरवाजे बंद कर सो जाओ, चुपचाप बैठो, भगवान का नाम नहीं ले पाते नहीं लो कोई बात नहीं, कुछ भी कर पाते तो करो, नहीं तो चुपचाप रहो। शांत तो होने के बाद कुछ निर्णय करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो क्रोध में जितने अपने समझदार समझ कुछ बोले, समझकार शांति से बोलेंगे कहीं के, किन्तु बोलते बोलते क्रोध के कारण कुछ ना कुछ बोल देगा, निर्णय भी कभी कुछ ना कुछ निर्णय कर लेता है, कोई कोई से कहते यहाँ आज से मैं इस चीज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा, है वो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा जैसे कर लेते हैं, फिर बाद में दुखी होते हैं, फिर वो शुरू करते हैं, कोई कुछ कह दिया यार चल ये मैं ऐसे नहीं पहनूंगा, ऐसे हम नहीं लूंगा, हम नहीं लेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ कर लेता है, वो जल्दीबाजी से कुछ करके लाभ नहीं है, क्रोध समय में शांत होकर रह जाए, ये समझ करके करना पड़ता है, पाप विचार करने पर पता चलता है, इसे क्या हानि क्या लाभ हो, कुछ करने के लिए मन में आया तो विचार करे इससे क्या लाभ है क्या हानि है, सत्कर्म सन्मार्ग में चलते हैं तो ठीक है, उसमें कुछ करने के लिए विचार करे ये क्या हमारे कल्याण के लिए सहकारी है या उसका विरोधी है, जो कल्याण सही मार्ग में चलने के लिए सहकारी है तो वो प्रिय है, जो सही मार्ग में चलने के लिए विरोधी है वो आपका उपकारी है, इसलिए शास्त्र में आता है कौन उपकारी कौन क्या है, कौन है प्रिय कौन है अप्रिय, के शत्रव मित्रवद, कौन ऐसे शत्रु मित्र जैसे लगते हैं, एक प्रश्नोत्तरी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के शत्रव मित्रवद ये प्रश्न है, कौन शत्रु मित्र जैसे लगते हैं, आत्मजाद्या पुत्रादि है, आप सबका अच्छा नहीं लगेगा पुत्र को शत्रु कहते करके, भगवान शंकराचार्य कहते उनसे पूछा प्रश्न है के शत्रव मित्रवद, शत्रु कौन है मित्र जैसे लगते हैं, क्या आत्मजाद्या आत्मजय पुत्र आदि दे दिया प्रिय, जो अपने जिसको प्रिय मानता है ना, पुत्र हो पुत्री हो, जो धन को प्रिय मानता है जिसको प्रिय मानता है ना वो मित्र जैसे लगता है किंतु शत्रु है, शत्रु किस लिए क्यों हुआ, आपको श्रेय मार्ग से हटा देता है इसे शत्रु है, लगता है हमारा मित्र किंतु मित्र होकर के आपको श्रेय मार्ग से हटा देता है, मित्र कहता है हमारे नाती पोते का शादी आ जाओ, मित्र कहता है ना, और मित्र की बात रखकर जाना पड़ता है, जाना पड़ता है ना, नहीं श्रेय मार्ग छोड़ करके जीवन भर भटके भटके यही शादी विवाह करते करते मरने तक उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो अपने कल्याण मार्ग से हटा दिया ना, जो कल्याण मार्ग से जो हटा दिया वो मित्र है या शत्रु है, मित्र जैसे लगता है, बड़ा मित्र है हमारा बड़ा बंधु, कितने प्रिय है, वो बुलाए नहीं जाए तो उसको दुख लगेगा कैसे नहीं जाएंगे, हर लगता है ना, नहीं के शत्रु मित्रवद, मित्र जैसे लगते शत्रु कौन है, आत्मजाद्य अपने पुत्र आदि, खाली पुत्र नहीं पुत्र हो पुत्र है, कोई कहा हमारा सब क्या संबंध है, पुत्र के ससुराल है वो भी हमारे यहाँ आए थे, हम कैसे नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा होता है ना, तो जाना पड़ेगा तो क्या करता है, खाली ये सत्संग ये प्रवचन के लिए नहीं करते, अपने साधन भजन भी छोड़कर जाना पड़ता है, ये मैं नहीं कहता कि इसी प्रवचन कोई छोड़ देता है, इतने मात्र नहीं, अन्य समय में किसको कहा तुम गीता सुनना चाहते तो आओ, कहीं हमारे साधन भजन छूट जाएगा इसे नहीं आ पाते हैं, और शादी विवाह जाने के लिए साधन भजन क्या नाम होता है, शादी में जाना तो साधन भजन छूटता है, सुबह से तैयारी बंठन कर तैयारी होकर के रात 2 बजे आएंगे, उसके दूसरे दिन सोएंगे 3 दिन तक, उसका तैयारी होने के लिए एक दिन नहीं जाना है, एक दिन नहीं उससे तीसरे दिन सोना तो क्या किया उपकारी मित्र ने, क्या किया आपका साधन भजन से छुड़ा दिया, अब मिला क्या है कुछ नहीं, यही होता है, इसको समझना पड़ता है, विचार करके करना पड़ता है, हाँ कुलक्षय कृतम दोषम प्रपस्वदी जनादन, श्लोक बोलो, कथं न कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना मधर्मो भीभवत्युत कुलक्षय सनातनः कुलधर्मः प्रणश्यन्ति। कुलक्षय हो जाए, कुल के नाश हो जाए, जो कुल के धर्म है, कुल के धर्म को सनातन कहा। कुल की जो परंपरा है, पिता पितामह प्रपितामह ऋषि मुनियों से कुल की परंपरा, अभी जो कुल चल रहा है यही दो तीन चार प्रांत पीढ़ी के अंदर सब रह जाते हैं। मूल देखना कोई गोत्र आदि होते ऋषि मुनि की परंपरा है, उसी परंपरा में अभी आजकल नया भूल जाते दो चार पांच पीढ़ी के पीछे विचार करना, देखना कैसे थे, क्या करते थे, क्या किसी उनका जीवन कैसे था, क्या तप है, कैसे जीवन है, उसके पहले देखना। बहुत सज्जन परंपरा है, बहुत पवित्र परंपरा, शास्त्रीय परंपरा। धीरे धीरे क्या होता है, शास्त्र से दूर हो जाते हैं, आधुनिक विद्या अध्ययन करके पिता माता की बात नहीं मानते, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, परंपरा से हटते हटते जाते हैं। जो पहले नहीं मानता है कि शास्त्र पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, सुनेगा तो अपने आप रास्ता पर चलेगा, इसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। और जो जानेंगे, जो नाचने को देने वाले जो करते उसको सीखेगा, वो शिक्षा के लिए नहीं होता है। सिनेमा में जो देखते हैं, विदेशी जो परंपरा देखते हैं, वो तो परंपरा अलग है मनोरंजन के लिए। अभी क्या हो गया, जो मनोरंजन जो लोग विपरीत कुछ ना कुछ दिखाते नाचने कूदने वाले, वो हो गया आदर्श, उसका अनुकरण किया जाता है। जो है त्याज्य ऐसा कहीं कहीं होता है, जो देखना नहीं चाहिए, जो सुनना नहीं चाहिए, उसको देखना सुनना फिर उसको अनुकरण करना, कितने मूर्खता है। बहुत ऐसा है जिसको देखना नहीं चाहिए, ऐसे पुराने लोग उसको देखेंगे नहीं, सुनना नहीं चाहेंगे, वो उसको देखना उसके बाद उसको अनुकरण करना, माता पिता की बात नहीं मान करके वो पर सच। ये लोग पुरानी परंपरा के, पुरानी परंपरा कहकर हम लोग समझदार है, बच्चे बहुत नया नया लोग मानते ना, ये पुरानी परंपरा, पुरानी परंपरा मतलब बिल्कुल गलत। पुरानी परंपरा, पुराण परंपरा, आत्मा पुराण है, आत्मा का नाम पुराण, पुरा पी नव। और अब बड़े बड़े लोग, बहुत वैज्ञानिक लोग, बहुत विचार करने वाले दार्शनिक लोग, वो आधुनिक में बहुत जानने के बाद पुरानी परंपरा में आ रहे हैं। जो अष्टाध्यायी व्याकरण सूत्र बना संस्कृत भाषा, लोग कहेंगे तो क्या संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत कहते गया वो भाषा, बिल्कुल मृत मृत भाषा कहते हो, गया समाप्त हो गई। किंतु आजकल नया कंप्यूटर में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कहते हैं संस्कृत भाषा को, जो कंप्यूटर यंत्र है वो उसमें देखते हैं तो संस्कृत भाषा के लिए जितने वो ग्रहण करता है और उसको स्वीकार करता है, जितने उसको मानता है, अन्य भाषा उसके सामने नहीं है। जो मंत्र भगवान का नाम है उसी मंत्र में शक्ति है, वैज्ञानिक लोग कभी यंत्र बनाकर दिखा देते हैं, तो मंत्र बोलो उसमें क्या सामर्थ्य है, क्या तरंग होता है, वैज्ञानिक को परिचय करते, जो मुनि ऋषभ लोग पहले बताए थे ऐसे मंत्र उच्चारण करो, इससे क्या लाभ है, यानी है। धीरे धीरे उसी परंपरा में रोग प्राकृतिक चिकित्सा से रोग निवृत्ति होती है। पहले कोई कहे इसको खाओ इसको नहीं खाओ, कोई नहीं मानेंगे। बाद में जो रोग होता है, डॉक्टर वैद्य कहेगा ऐसी चीज नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बाहर जो घूम घूम कर खाते हैं ना, सबके लिए वैद्य मना करता है, छोड़ो नहीं खाओ, तभी मानना पड़ता है, डॉक्टर कहेंगे तो मानेंगे। डॉक्टर कहने पर पहले भी नहीं मानते, जब पीड़ित तो होते तो मानते, मानना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो फिर बहुत दुखी होते। बहुत इस प्रकार है। तो शास्त्रीय परंपरा कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म, जो अग्निहोत्रादि कर्म है, तर्पण है, श्राद्ध पितरों को देना, शुद्ध भोजन विवाह कराते हैं, लाख लाख करोड़ों खर्चे करते हैं, जो पितर को देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, देवताओं को देना चाहिए, और शुद्ध भोजन नहीं अर्पण करते हैं। जो अशुद्ध भोजन होगा, पितृलोक देवता लोग ब्राह्मण लोग को ग्रहण नहीं करेंगे। कोई ब्राह्मण लोग से खा लिया तो भी वो ब्राह्मण को प्राप्त नहीं होता है, अशुद्ध भोजन पाप होता है। यदि कुछ अखाद्य खिलाया, अशुद्ध प्याज उदार के लिए खिलाया तो ग्रहण नहीं करते, ग्रहण कर खाया ब्राह्मण खाए तो आपको पाप लगेगा। देवता लोगों को पितरों को अर्पण करने से ग्रहण नहीं करते हैं तो दूर हट जाते हैं, भूत पिशाच राक्षस आदि का प्रवेश होता है। जहां मंगल कार्य में ये सब होगा, उसी में कार्य विवाह से आगे क्या मंगल होगा। मंगल कार्य में देवताओं को पितरों को दे करके तृप्त करके करना पड़ता है, ये परंपरा है। इसको प्राचीन समझ करके आधुनिक करके कुछ हो जाए, यही आधुनिक करके होता है। दो तीन चार सब लड़के पति पत्नी विवाह है, कोई छोड़ दिया फिर किसको, कोई कहते कहते विदेश में कोई बता दे कहीं किसको, किसके माता के पति के दूसरे पत्नी उसके पुत्र, सब कहीं कहीं कार्यक्रम होगा, वहां मिलेंगे, उसके परिचय होता है। क्या परिचय होगा, कैसे परिचय होगा, वो बोलना भी ठीक नहीं होता है। इसके माता के अपने उसकी माता के दूसरे पति है, दूसरे पति की तीसरी पत्नी है, उसकी पत्नी के पुत्र है, उसका क्या है, ऐसे ऐसे करके परिवार होते हैं संबंध। ये अपने सभ्यता मिशा नहीं। कुल क्षय होने पर कुल धर्मा सनातना प्रणश्यन्ति, ये सनातन धर्म के परंपरा, ये धर्म सनातन धर्म ही धर्म है। जो धर्म हमेशा नहीं रहता वो धर्म नहीं है। धर्म तो होता है धरत इति धर्म, ध्रियत इति धर्म, ध्रियत अनन इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है, जो सबको धारण करता है वो धर्म है, जिसके द्वारा धारण किया जाता है वो धर्म है, सबको धारण करने वाला धर्म है, वही सत्य ही धर्म है। और धर्म ही धारण किया जाता है, आप कुछ धारण करके लेकर के नहीं जा सकते, धर्म ही लेकर जाते हैं। धारण करके कुछ लेकर रहेगा, धारण करना क्या है, जिसका धारण करने में तो जिसको रखो, जब चाहे रखो, जब चाहे हटाओ, तभी उसको धारण किया। बहुत वजन पकड़ा दिया, पकड़ते पकड़ते छोड़ दिया, उसका धारण किया, जब कोई जब लिया पकड़ा पकड़ कर चलो, जब चाहे उसको छोड़ो हटाओ रखो, जब चाहे उठाओ, तब उसका हम धारण करते हैं। कोई पकड़े इसको धारण कर पकड़ो लेकर चलो, और पकड़े पकड़े गिरा दिया। जिसको आप रख सकते हैं, जब चाहे जा चाहे ले सकते हो, वो धारियते थे धर्म, धारण किया जाता है, धारण किया धर्म ही धारण किया जाता है। अर्थात धर्म को आप छोड़ो न चाहते तो नहीं छोड़ेगा, उसको पकड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब जाता है पुण्य पाप, धर्म के साथ अधर्म मिला हुआ, धर्म अधर्म उसको धारण करने के लिए पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। नहीं पकड़ेंगे तो जाते समय धर्म अधर्म जाएगा नहीं जाएगा, हाँ साथ में जाता है, प्रयास करना नहीं पड़ता है। और कोई हीरे के मुकुट बना करके उसको रखा ही जाने के लिए लेकर जानेगा, मरते समय ले लेगा और मणि उसमें लगा दे, जितने हो जाए उसको लेकर जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाएगा, कि धर्म अधर्म जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गिरिधारी कहते मालूम है ना, गिरिधारी, गिरिधारी क्या है, गोवर्धन गिर को रखा, इंद्र वर्षा से बचाने के सबको बुलाया, पर्वत को रखा और सब लोग रहे। सब लोग बुलाने के बाद यदि पर्वत छोड़ देते क्या होता है, सारे सब उसके बाद कोई उनका नाम लेता, कहते गिरधारी, कहते गिरधारी नाम उनका होता, गिरधार धारण किया, पकड़ा सबको छोड़ के मार दिया। गिरी का धारण किया, जब चाहे तब तो धारण किया, उसके बाद इंद्र थक गया, सबका बाहर जाओ, फिर पर्वत को रख दिया, तभी गिरिधारी हुए। इसी प्रकार जिसको आप धारण कर पाओ, जब चाहे रखो जब चाहे हटाओ, वो धारण किया जाता है। कौन धारण किया जाता है, धर्म ही धारण किया जाता है, और कुछ नहीं। जाते समय दूसरे को कोई लेकर नहीं जाता है, धर्म को, धर्म को लेकर क्या जाना, धर्म उसको लेकर जाता है, धर्म उसको कहां जाना है, धर्म उसको लेकर पहुंचाएगा। आपको पता नहीं कहां जाना है, गंतव्य आगे कौन सा कर्म फल देने वाला है, धर्म पुण्य पाप दोनों उसको लेते हैं, वही धर्म है। धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्मे नष्टे कृत्स्नम कुलम अधर्म अभिभवति। धर्म करने से पाप होने पर धर्म कुछ रक्षा करता है, पाप कर्म तो होते ही किंतु धर्म कुछ है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म नहीं होगा तो पाप बढ़ जाएगा तो पाप धर्म को दबा देगा। पाप है पुण्य है दोनों सबके है, बहुत पुण्य कर्म है तो थोड़े पाप होने पर उसको दबा देता है, पुण्य कर्म फल देता है। और यदि धर्म नष्ट हो गया, पाप तो हो गई, पाप उसको बढ़ करके क्या करेंगे, धर्म को दबा देंगे, तो फिर धर्म अधर्म अधिक हो जाएगा, नीचे जाएगा। अधर्म होने से नीचे आता है, पशु पक्षी बनता है, नरक जाता है। पुण्य अधिक होगा तो स्वर्ग आदि जाता है। और जब पुण्य पाप बराबर होते हैं तो मनुष्य जन्म होता है, अपने हाथ पर नहीं है। पुण्य पाप बराबर क्या, संचित कर्म तो बहुत है, बहुत होने पर ये नहीं कि आपके पुण्य पाप आप मनुष्य जन्म बनेंगे और आपका कोई पुण्य कर्म बाकी है, पाप कर्म कोई बाकी है, संचित कर्म है, पुण्य है या पाप है, आगे जन्म में उनमें से कोई कर्म फल भोगना पड़ेगा या नहीं, पुण्य कर्म भोगना पड़ेगा या पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा, कोई निश्चय नहीं किस पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कोई विशेष कर्म यदि है तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, कोई विशेष पाप है तो पाप नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। संचित कर्म सब प्रकार कर्म है, कोई विशेष कर्म फल देने की तैयारी हो गया, आगे उसका फल भोगने के लिए जाना पड़ेगा। यहां बहुत सत्कर्म करने पर भी, बहुत पुण्य कर्म किया तो भी कोई विशेष कर्म आपका कितने जन्म के पहले का पाप कर्म तैयार हो गया फल देने के लिए, वही पहले फल देगा, बाद में आएगा। यहां जो करेंगे नष्ट नहीं होगा, वो तो रहेगा फल देगा, किंतु आगे जो कर्म फल देने की तैयारी हो गया उसको तो पहले भोगना पड़ेगा। इसे निश्चित नहीं आगे हमको कहां जाना है, यहां पर कर्म करते है तो भी अगले जन्म क्या बनेगा निश्चय नहीं है। इसलिए धर्म अधर्म जो दबा देता है, सनातन धर्म धर्म नष्टे कृत्स्नम कुलम संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता अभिभवती उत्तरगात अपी, अधर्म को अधर्म पूरा कुल को धर्म को नष्ट कर देता, दबा देता है। सनातन धर्म ये वैदिक सनातन धर्म वेद एक है जो अपौरुषेय, अन्य जितने धर्म है लोक के द्वारा पुरुष के द्वारा कोई सिद्ध के द्वारा किसी ऋषियों के द्वारा प्रणीत मत है। वेद वैदिक मत किस ऋषि के द्वारा प्रणीत मालूम है, ऋषि महर्षि कोई व्यक्ति किसने क्या वैदिक धर्म नहीं। वेद अपौरुषेय क्या है, वेद सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेद का वेद भान होता है, भगवान ईश्वर वेद का उपदेश करते ब्रह्मा को, कौन सा वेद का उपदेश करते, जो वेद पहले था पूर्व कल्प में था, नया नहीं है। रामायण महाभारत आदि बनाते हैं ऋषि महर्षि लोग, व्यास जी ने बनाया महाभारत, पहले भी कुछ था अभी भी कुछ है, रामायण में बहुत प्रकार है, किंतु वेद एक ही पूर्व कल्प में से था, उसके पूर्व कल्प में से था, अनादिकाल से वही वेद है। भगवान ईश्वर भी वेद के एक अक्षर परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे पहले वेद था ऐसे वेद अनायास निकलता है उपदेश, रचना नहीं की गई वेद की, इसे उसको कहते अपौरुषेय। महाभारत की रचना हुई है उसको पौरुषेय कहेंगे अपौरुषेय कहेंगे, यद्यपि रचना करने वाले महाभारत व्यास जी कोई कम नहीं है तो भी पौरुषेय है। ईश्वर भी रचना करेंगे तो पौरुषेय हो जाएगा, वेद की रचना ईश्वर ने की है नहीं, नहीं ईश्वर ने रचना नहीं की, ईश्वर में तो केवल उसको उपदेश किया, इसलिए अपौरुषेय वेद है। और आगे जितने मत है सारे मत पौरुषेय है, और ब्याची ने हवि वेद के सिद्धांत को महाभारत में सारे शास्त्र में अष्टादश पुराण में रखा, बाकी जो भी कुछ कहे व्यासस्य उच्चिष्टम सर्वम उचित झूठे, व्यास ने जो कहा उसी से अलग कोई कह नहीं सकता है। जितने मतभेद मत वाले सारे सिद्धांत शास्त्र में मिल जाएगा, सब इसमें है। इसमें जो सिद्धांत शास्त्र में पुराण आदि में महाभारत में जितने हैं सब, अभी आयुर्वेद वैद्य के पास गए थे, आयुर्वेद वैद्य बताते हमारे कैसी परंपरा अरे शास्त्र में कैसे है, ये सब मालूम है आपको, आयुर्वेद के शास्त्र है। ये वैज्ञानिक लोग अभी करते हैं, किंतु किस जड़ी बूटी से क्या बनेगा, कितने जड़ी बूटी क्या लेना, किसके साथ किसको मिलाना, ये वैज्ञानिक लोगों ने बताया। किसने बताया? आयुर्वेद शास्त्र। किसने बनाया उसको? ऋषि मुनि ने चरक एक बनाया। अब ये वैद्य बताया, बड़े अच्छा वैद्य। चरक कहते हम क्या बनाए, हमको किसने उपदेश किया? नाम नहीं। उनको पूछा वो हमको किसने उपदेश किया, उनको पूछा हमको उपदेश किया, उनको पूछा गए ब्रह्मा जी ने हमको बताया। ब्रह्मा जी कहते मैं तो ध्यान में बैठा था, मुझे ऐसे भान हुआ। अपने रचना अपने मन से नहीं, ऐसे परंपरा से प्राप्त अनादिकाल से ये आयुर्वेद शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण कैसा है उसको बनने के लिए गौतम महर्षि ने लिखा मंत्र आयुर्वेदवत प्रामाण्यम। मंत्र के शक्ति है, अभी परीक्षा कर देखा थे, मंत्र ध्वनि में शक्ति है। मंत्र के द्वारा सर्प को बांध लेते हैं, सर्प विष को हटा लेते हैं, मंत्र से कुछ करके आरोग्य कर लेते हैं, मंत्र की शक्ति है। वो प्रमाण है आयुर्वेद जिस प्रकार प्रमाण है, इसी प्रकार सारे शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र में मैं बताया था हमारे पास है प्रमाण, जो होम्योपैथी औषध बनाते हैं, भागवत में श्लोक मिला होम्योपैथी औषध बनाने मूल उसमें है। पहले बताया था, अभी हमारे पास है, बताएं कभी, जो होम्योपैथी जानते वो लोग समझेंगे। ये भागवत में श्लोक मिला, हमारे शास्त्र में सब कुछ है, तो उसके अनुसार चले ना चाहिए, सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, तो क्या हानि है आगे बताएंगे। शोक बोलो कुल क्षेपण नष्ट हो जाएंगे, प्रणाश प्रकर्षण नाश हो, नश्यंत होते नाश होते ही, प्रणश्यंत प्रकर्षण नष्ट पूरा समाप्त हो जाएंगे, प्रणश्यंति कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णशङ्करः अधर्म जो बढ़ जाता है धर्म को दबा देता है। हे कृष्ण कुल स्त्री प्रदुष्यन्ति, कुल के जो स्त्री है दूषित हो जाते हैं, दूषित हो जाती है कुल स्त्री, दूषित कुल स्त्री गृह लक्ष्मी कहते शास्त्र में आया, घर की लक्ष्मी है कुल स्त्री, अपनी जो पत्नी गृह लक्ष्मी है वो प्रसन्न रहे, उसको प्रसन्न रखना चाहिए और पवित्र शुद्ध रहे, चरित्र शुद्ध होना चाहिए। यदि वो पाप बढ़ जाता है तो कुल स्त्री दूषित हो जाती है, दूषित होता हुआ चरित्र हीनता है, स्वयं नहीं रह पाती, जब स्वयं नहीं कर पाएंगे दुष्ट हो जाते हैं। स्त्री सु दुष्टासु हे वासनेह वर्ण शंकर जायते, वर्ण शंकर पुत्र आदि उत्पन्न हो जाता है, जहां वर्ण शंकर पुत्र हो जाते हैं वो पुत्र कुछ अर्घ्य देगा, पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, पितृलोक उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो वर्ण शंकर आ गया तो गया, बहुत हानि दुष्ट है। तो अधर्म होने पर पाप होने पर ऐसा होता है, धर्म ही रक्षा करने वाले। कुल स्त्री यदि सन्मार्ग में कितने शास्त्र में आया, सत्य में क्या शक्ति है, और यदि कुल स्त्री सन्मार्ग पर है, कुल स्त्री लक्ष्मी है, पति को भी बच्चे को सब परिवार को सबको रक्षा करती है, वही पत्नी पति के लिए माता के बाद पत्नी को खिलाने वाले पत्नी ही खिला सकती है, दूसरे कोई नहीं खिला सकता है। और माता के बाद पत्नी दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर धर्म करने के लिए आया, सहधर्मी कहा गया। वो यदि दुष्ट होगी तो वर्ण शंकर हो गया तो करा गया, वो कब क्यों होता है, धर्म नष्ट, धर्म नष्ट होने पर अधर्म बढ़ जाएगा, और अधर्म धर्म को दबा देगा तो क्या होगा, अधर्म अभिभवात, अधर्म यदि बढ़ जाते हैं धर्म को दबा देगा तो कुलस्त्री और प्रदूषंती, और कुलस्त्री दूषित हो जाएंगे तो क्या होगा, जायते वर्ण संकर श्लोक बोलो शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ये वर्ण शंकर पुत्र हो गया तो क्या करेगा नरकाय एव वो तो पुत्र और किसी काम के लिए नहीं ऐसे वर्ण शंकर पुत्र घर में हो तो क्या क्या करेगा नरकाय एव नरक के लिए ही आया नरक किसको मिलेगा कुल घ्नान कुल सेच कुल को नष्ट करने वाले कुल के घातक और कुल पिता पिता महे आगे पुत्र आदि सब को नरक पहुंचाएगा क्यों नरक है अग्निहोत्र आदि पिंड दान तर्पण आदि करेंगे तो पितरों का उद्धार होता है जो पिंड दान करते हैं अभी प्रामाणिक है गया में पिंड दान करते हैं तो पितरों को ग्रहण करते हैं बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में पिंड दान करते हैं तो ग्रहण करते हैं उससे उनका उद्धार होता है कोई पिंडदान करने गया उसको कोई दूसरे घर में कोई आकर के बताता है उसके माता माता की माता कोई तो अमुक गया मेरे लिए पिंडदान करो जब मर गया किसके सर में आकर बताती है कि मेरे लिए पिंडदान करने के उसको बोलो और कोई पिंडदान कर आए तो वो कहते आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मेरे लिए कर्म किया मेरे मेरा उद्धार हो गया मैं बहुत कष्ट में था ऐसा कई किसके सर में आकर के बोलते हैं प्रामाणिक है शास्त्र में तो है शास्त्र तो है शास्त्र के बाद इस प्रकार प्रमाणित है अपने अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ था वो व्यक्ति अभी भी है जिस व्यक्ति को ऐसे कुछ मैंने बताया पिंडदान करो गया में पिंडदान करने के बाद गया बद्रीनाथ पिंडदान करने के लिए कला शासन के न्यास में ट्रस्टी भी है व्यक्ति है अजय कपूर उसका नाम अभी है उसके माता भी है उसके साथ उसके बंधु भी चला गया घूमने के लिए जाते चला गया ये जा गया था पिंडदान के लिए उसके बंधु गया बद्रीनाथ में जो पिंडदान करने के लिए ब्रह्म कपाली के लिए किया उसका मन में आया क्या करना पड़ता है मैं भी अपन कुछ कर लू पंडित से पूछा पंडित कहा हो जाएगा कोई चिंता नहीं ऐसे हो जाएगा किन्तु आपका गोत्र क्या है बोला गोत्र तो हमको मालूम है गोत्र पता कर लो उधर से फोन किया घर में मैं हमारा गोत्र क्या है तब तक क्या है उनके घर में उनके भाभी में कोई आकर के अमानव पुरुष कोई आकर के बोलता है वो उसको बोलो मेरे लिए कुछ कर दे बोलते क्या है ना उसको बोलो मेरे लिए कर दे बस फिर बोले तू कहां है पहले बताओ क्योंकि इसे घूमने जाते कभी तो उसके साथ गया घर में नहीं बताया कहां जाते हैं बोले तू है कहां बोलो वह मैं बद्रीनाथ आया हूं घर में बोला मैं कहां जाता हूं उसके साथ जाते तो कभी बहुत जाते आते घूमते रहते और कुछ व्यवस्था में जाते तो कहां गए उनको घर में मालूम नहीं था बद्रीनाथ ने कहा तुम्हारे भाभी में आया था कोई अमुक का नाम लेकर बताया मैं अमुक हूं और उसको बोलो मेरे लिए कुछ कर ले वो व्यक्ति कहने पर उसके तो वो विश्वास नहीं करता था पहले पसीना पसीना हो गया क्या मैं किसको नहीं बताया यहां आया उसको कैसे पता चला भी आदमी को उत्तर बताए वो किया व्यक्ति अभी है जो व्यक्ति दो व्यक्ति गए थे अभी है मेरे हमारे आश्रम में आते हैं उनकी माता आती है वो व्यक्ति जो गया था वो भी आकर मिला अभी है प्रामाणिक है तो उसने कहने से वहां पिंडदान किया अब पिंडदान करने के बाद उसको की प्रसन्नता जो आनंद उस स्वयं कहता है कि उससे हमको घर में बहुत विघ्न दूर हो गया घर में कुछ कुछ संकट विघ्न होता है और पितरों को तृप्त कराओ तो उससे तृप्ति होकर के उनकी कृपा से आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है बहुत लोग में देखा गया अर्थात यहां पिंडदान करने के लिए उसके कोई मर गया था वो आकर बताता है मेरे लिए पिंडदान करो तब किया तो ये प्रामाणिक अभी भी है व्यक्ति अभी तो शंकर हो जाने पर कुलों के लिए क्योंकि वो पिंडदान करने से वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे तर्पण आदि करने से नहीं होगा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो आगे फिर इनके पाप के कारण कुल का नाश हो जाए, कुल में वर्ण संकर आ गया तो वहां कुल समाप्त हो गया, तो पितर जो कुल सब पतंती संकर नरक आए, नरक पतंती पितर वेशम, उनके पितृलोक पतंती नरक जाएंगे। क्यों? लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया उनका लोप हो गई। कौन करेगा, कौन देगा? जिसके पुत्र नहीं होता इसलिए पुत्र करते है। आगे हमारे लिए पिंड प्रदान करे, उदक क्रिया तर्पण करे, एक पिंड तर्पण है कि श्राद्ध पिंड दान, उससे पितरों को प्राप्त होता है। वो यदि कोई करेगा नहीं तो समाप्त हो जाने पर वो उनको नरक जाना होता है। जो पिंड दान करते हैं हर साल नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए गया में पिंड दान करे। गया में करने के बाद बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में पिंड दान करे, वहां कर दिया तो आगे पिंडदान नहीं करने पर चलेगा। वहां नहीं, वहां करने पर लाभ होता है, बहुत लोगों ने करके और प्रसन्न होते हैं और स्वयं अनुभव बताते हैं, उसके बाद हमारे घर में बहुत कल्याण हो ऐसे बताते, बहुत लोग हमने कहा कर कराया करते हैं। आप लोग में जिनको मालूम नहीं है, नहीं क्या है, तो पितरों के लिए ऐसे पिंडदान करना चाहिए। बहुत खर्चा नहीं होता है, बहुत आप लोग खर्चा करते सब। एक बार गया में जाकर पिंडदान करना है, वहां ऐसे प्रकार है, और बहुत संख्या में कोई एक दिन में कर लेते हैं, कोई तीन दिन में करेगा तो जहां जहां करना तो हो जाता है। अब पंद्रह दिन रहकर करते तो थोड़ा धीरे से होता है, किंतु कम से कम तीन दिन में करे, जहां जहां करना सब करा देते, पंडित लोग बता देते हैं, लेकर करा देते हैं। तो उसके बाद बद्रीनाथ में ब्रह्म के फल में पिंडदान होता है, वहां करने से पितरों का उद्धार होता है। किंतु पुत्र आदि कोई जिनके पुत्र आदि नहीं हो तो कोई भी कर सकता है। कोई कोई ऐसा करते स्वयं अपने लिए पिंडदान करते हैं, गया में अपने लिए जीवित होकर के पिंडदान करते हैं, किंतु इतने जो अपने लिए करेगा उसके बाद वो स्वयं मंदिर आदि में जाने में थोड़ा उसका रोक लग जाता है, क्यों जैसे मृत हो गया उसका उद्धार होगा, कर सकता है। और अपने परिवार में कोई जाता है, कोई करे तो करते हैं, कोई जाता है तो उसे ससुराल के लिए, अन्य कोई हो जा करके कराते हैं, प्रतिनिधि बनाकर भी कराते हैं।
मरने के पहले,
मरने के पहले भी कोई करते हैं, इस उससे लाभ इतने है। हाँ ब्राह्मण से कर, ब्राह्मण तो कराएंगे, किंतु स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, उपस्थित होना पड़ता है। कोई पुत्र आदि, पुत्र भाई के पुत्र, अन्य कुछ संबंधी कोई हो तो उपस्थित होने से अच्छा होता है। और बाकी ऐसे रहने से कर देते पंडित लोग, उनके नाम लेकर, किंतु कोई रह कर क्या करे तो अच्छा होता है। लुप्त पिंड दक, पिंड उदक क्रिया समाप्त होने पर वो नरक जाते हैं सब। श्लोक बोलो। दोषैरेते हि कुल ज्ञानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। एते ही वर्ण संकर कारक ही दोषे ही कुल घ्राण, वर्ण संकर कारक ही दोषे ही जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म कुल धर्म, जाति के धर्म कुल के धर्म, च से आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म कुल धर्म, जिस जो कि शाश्वत, शाश्वत का थे नित्य। धर्म नित्य कैसे है? क्योंकि श्रुति मूलक होने से, श्रुति वेद उसका मूल, वेद नित्य है, वेद मूलक होने से ये सब स्वर्ग अपवर्ग देने वाले। जाति धर्म है, जाति में अनुसार कर्म करते हैं, कुल धर्म है, कुल धर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है, और शाश्वत धर्म नित्य कर्म करने से, आश्रम धर्म करने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्वर्ग मोक्ष देने वाले धर्म सब समाप्त हो जाते हैं,
जब कुल ज्ञाति हो जाते हैं, जाति धर्म सनातन नष्ट हो जाते हैं, तो इन दोष के कारण सब समाप्त हो जाता है, जाति धर्म कुल धर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये वर्ण संकर कारक दोष है, इस दोष नहीं होना चाहिए। यदि दोष होता है तो आगे पितरों सब नरक जाते हैं, धर्म से नष्ट हो जाता है। और धर्म नष्ट से क्या होगा आगे बताएंगे, श्लोक बोलो। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति त्यनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा हे जनार्दन नरके नियतम वास भवती अनुसुषुम। हमेशा सुने आए शास्त्रों के पूर्व पुरुष ने बताया, प्रामाणिक परंपरा क्या सुने है, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है, नियतम वास निश्चित वास स्थायी होकर के, कोई उनके हिला नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, आराम से नरक में रहेंगे। आराम से मतलब नरक की यातना भोग करके रहेंगे, इधर उधर जाने का नहीं। नियतम निश्चित वास नरक में होता है भवती, जिनके कुल धर्म समाप्त हो जाता है नरक में वास होता है। उस सन उत्तर नष्ट हो गया, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाए तो नरक। यहाँ नरक में वास होता है अर्जुन कहता है, अर्थात स्थूल देह आत्मा होगा, स्थूल देह से भिन्न आत्मा है, मरने के बाद नरक जाना, मरने के बाद नरक जाना, स्वर्ग जाना, पतंति पितरो हेसाम, ये जो कहा नसांकर नरक आए वो, इसे क्या सिद्ध होता है, ये स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा है, स्थूल देह समाप्त होने पर भी ये जीवात्मा जाता है, पुण्य पाप कर्म फल भोगता है, ये भी मालूम होता है, विवेक होता है। ये भी अधिकारी के लिए चाहिए, वो स्वयं जानता है स्थूल देह आत्मा नहीं है। विवेक करने के लिए स्थूल देह में अहम बुद्धि होती है, मैं करता है, जानते सब ये स्थूल देह आत्मा नहीं, मर गया, किंतु मर गया मतलब क्या, मर गया क्या, गया कौन गया, स्थूल देह तो सामने पड़ा, और जो मर गया कहते तो चला गया, मरना क्या है, क्या मरण है, स्थूल देह से सूक्ष्म शरीर निकल गया, आत्यंतिक वियोग हुआ, दोबारा नहीं आता है, तो उसको मरण शब्द से कहते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाता है, स्थूल देह के अभिमान छोड़कर सूक्ष्म शरीर सुश्रुति में अज्ञान में कारण में लीन हो जाता है, किंतु फिर जब आ जाता है वही स्थूल शरीर में आ जाता है, किंतु मृत्यु के समय वो सूक्ष्म शरीर छोड़कर चला गया, गया तो फिर दोबारा नहीं आया, तो कहते मरण हो गया। सूक्ष्म शरीर में ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय प्राण अंतकरण ये सब जाते हैं, वो अंतकरण में पुण्य पाप संस्कार सब रहता है, वही इतने छोटे अंतकरण में सब कुछ रहता है, जहां जाएगा फिर आगे उसमें से जो कर्म फल देने वाले वो करेगा। नरक में वास होता है, इसे हम सुन न्याय कहने का अभिप्राय, देह से भिन्न आत्मा है ये समझता है, बहुत समझदार व्यक्ति मानने वाले अपने को कहते क्या आत्मा किसने देखा है, मर गया तो गया, ये चारवा का मत है, देह कोई आत्मा मानते, देह समाप्त होने से देह से बिना कोई आत्मा है ऐसे मानने को तैयार नहीं कुछ लोग, सब लोग नहीं बहुत लोग मानते हैं, तो देह से भिन्न आत्मा मालूम है, देह से भिन्न आत्मा तो भी देह में अहमबुद्धि नहीं जाती है, आप शरीर है ना, नहीं आपका शरीर है, शरीर किसका है, आपका शरीर तो आप शरीर नहीं, आपका मकान है तो आप मकान है, आपके मकान है तो आप मकान नहीं, ये शरीर आपका है तो आप ये शरीर नहीं, ये मालूम तो है किंतु देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है, तो क्या है आप, ये सब विचार करने पर
इतना कम से कम समझ ले ये देह स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, ये अर्जुन बताता है। थोड़ा देह बिना आत्मा उसका ज्ञान है। श्लोक बोलो। अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो आश्चर्य करके बत खेद प्रकट करने के लिए वयम महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता, बड़े पाप करने के लिए हम निश्चित कर बैठे निश्चित कर लिया। यद राज्य सुख लोभे न स्वजनम हंतुम उद्यता, राज्य सुख के लोभ से अपने लोग को मानने के लिए हम तैयार हो गए उद्यते, ये तो बड़े अनिष्ट करने के लिए हम तैयार हो गए। महत पापम जो कि अपने स्वजन नष्ट होने से कुल नष्ट होता है तो बड़ा पाप होता है, तो बड़ा पाप करने के लिए व्यवस्थित निश्चित है। महत पाप करने के निश्चय कर चुके हम जो अनुचित है, आश्चर्य हमने क्या निश्चय करके हम क्या कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य कि बड़े पाप करने के लिए तैयार होगी निश्चय कर चुके उद्यम है उद्यते स्वजनम हम तुम उद्यता, अपने लोग मानने के लिए हम तैयार है। किसके लिए? राज्य सुख लोभे न, राज्य सुख लोभे न जो अनित्य है राज्य अनित सुख, इसके कारण अपने जन को मानना चाहते जिससे नरक में जाएंगे नरक जाएंगे हमको नरक जाना पड़ेगा बड़े पाप होगा। अहो करे आश्चर्य। श्लोक बोलो। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शत्रपानय धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम अप्रतिकारम धातराष्ट्रः शत्र प्राणय रणे हन्य हूं अप्रतिकारम अशत्र माम, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा शत्र भी नहीं लूंगा तो शत्र प्राणय धातराष्ट्र रणे हन्य हूं मुझे मार दे तब तो मेरा कल्याण होगा क्षेमतरम, अर्थात मैं शत्र नहीं लेकर के प्रतिकार नहीं करके रहूंगा, शत्र लेकर धातराष्ट्र से मुझे मार ले तो भी हमारा कल्याण है। उनको मानने पर जो पाप है इतने पाप तो हमको नहीं होगा, उनको मार करके कुल क्षय करके जो नरक जाने वो नहीं होगा। मैं प्रतिकार नहीं करके रहूं सत्र नहीं रह करके वो सत्र पाने धाता ने मुझे मान ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। यहां तितिक्षा देखा, तितिक्षा विवेक वैराग्य होने पर समाधि सटक संपत्ति समदम उपरती तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तितिक्षा होनी चाहे सहन करेंगे क्षत्रिय होकर के शत्र नहीं लेकर के इसे प्रतिकार के बिना रहेंगे मुझे मार ले तो भी मेरा कल्याण है, ये तितिक्षा है सहन करना है। श्लोक बोलूं। यदि संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस मुक्ताजुन संके अर्जुन एवं अच्छा संजय उवाच संजय ने कहा किनको कहा किसे धृतराष्ट्र से कहा कहते क्या कहते एवं उत्वा अर्जुन अर्जुन एवं उत्वा अर्जुन इस प्रकार कह करके क्या कह करके यदि हन्यु तन्मे क्षमतर भवेद धातराष्ट्र रणे हन्युष सत्र पाने धातराष्ट्र रणे हन्युष तन्मे क्षमतर भवेद ये जो वाक्य इस प्रकार कह करके रथोपस्थे रथ में पीछे भाग में संख्य युद्ध में युद्ध के बीच में प्रांगण में उपाभिषद बैठ गया अर्जुन और कैसे करके बैठ गया सतरम चापम विसृज्य चाप धनु है सर के साथ धनु को लेता धनु रुद्यम में पांडव धनु लिया था धनु सर के साथ धनु को छोड़ करके छोड़ दिया कि युद्ध नहीं करूंगा कहा मैं नहीं मारेंगे मुझे बिना सत्र बिना प्रतिकार मुझे मार ले तो कल्याण होगा ऐसा कहो करके सर धनु छोड़ करके शोक संविघ्न मानस शोक से सम्यक उद्विग्न हो गया जिसका मन ऐसा अर्जुन बैठ गया पीछे युद्ध नहीं करूंगा निश्चय कर लिया देखा इसमें कल्याण नहीं है नरक जाना पड़ेगा उसकी अपेक्षा में कुछ नहीं करेंगे मार दे तो मैं मेरा कल्याण होगा श्लोक बोलो संजय उवाच इति श्रीमद् भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्माणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावितद्वक्तारमावित् आवीर्माम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।